डवला पुस्तक पांचवी लेक्चर नंबर 3 ओम नमः सिद्धेश्य ओम नमः सिद्धेश्य ओम नमः सिद्धेश्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं अन्ताय मच्छहीनं दशदशय चावदीहिरं पडमजिनं वोच्छम्णमिहूणन्तरणम् आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो प्रथम खंड है जीवस्थान नामक और उसमें अपना विषय अंतरानुगम का, पांचवी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 22 पर हम आ गए। 22 ओग में हमने गुणस्थानों में अंतर देखा है, अभी मार्गणास्थानों में मार्गणाओं में हम देखेंगे। पढ़ते हैं सूत्र नंबर 21। आदेशेण गदियाणुवादेण निरय गदीये नेरियेषु मिच्छादिट्ठि असन्दसम्मादिट्ठि नम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। अब एक एक गति मार्गणा की बात चलेगी। आदेश की अपेक्षा गति मार्गणा के अनुवाद से नरक गति में नारकियों में मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि जीवों से रहित रत्न प्रभादि यानी पहली से लेकर सातवीं तक सभी आ गए पृथ्वियां किसी भी काल में नहीं पाई जाती, यानी सातों ही नरकों में मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा पाए जाएंगे, चौथे गुणस्थान वाले भी हमेशा पाए जाएंगे। उसका अर्थ है नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। नारकियों की बात चल रही 22 नंबर पेज। अभी नारकियों में गुणस्थान लगाएंगे। नारकियों में गुणस्थान कितने होते हैं?
चार,
एक से चार। तो पहले गुणस्थान वाले नाना जीव हमेशा होंगे, चौथे वाले भी हमेशा पाएंगे। अब एक जीव की अपेक्षा बात करेंगे। एक जीवम पड़ुच्च जहन्ने न अंतो मोक्तम। एक जीव की अपेक्षा उक्त दोनों गुणस्थानों का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, यानी चौथे का भी और पहले का भी। पहले वाला समय को प्राप्त करके वापस पहले में आएगा, चौथे वाला मिथ्या में जाके फिर समय दृष्टि होगा। अंतर चल रहा है, अंतर चल रहा है। पहले हमने काल देखा था, काल में मिथ्या में अंतर्मूत रहकर वापस गया, यहाँ कितना गैप हो गया, चौथे का गैप है। वो नीचे के गुणस्थान में आके वापस चौथे में आ गया, तीसरे में गया, पहले में गया। इनमें से पहले मिथ्या दृष्टि का जघन्य अंतर कहते हैं। अभी इसमें भी जिसने बहुत बार समय को प्राप्त किया ऐसा जीव लेना है, उसको कहते देखा है मार्ग को जिसने, ऐसा एक मिथ्या दृष्टि जीव परिणामों के निमित्त से सम्यक मिथ्यात्व को अथवा सम्यक्त्व को प्राप्त होकर तीसरे में या चौथे में जाकर सर्व जघन्य अंतर्मूर्त काल रहकर पुनः मिथ्या दृष्टि हो गया। इस प्रकार से अंतर्मूर्त प्रमाण जघन्य अंतर काल लब्ध हुआ। पहले हमने काल देखा था, अभी यहाँ अंतर देखना है। इसी प्रकार किसी एक असंयत समय दृष्टि नारकी को मिथ्यात् गुणस्थान में ले जाकर सर्व जघन्य अंतर्मूर्त काल द्वारा पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त कराकर असंयत समय दृष्टि जीव का जघन्य अंतर कहना चाहिए। मिथ्यात्व का जो जघन्य काल देखा था वो असंयत का जघन्य अंतर होता है। क्योंकि वो पहले में आया फिर वापस गया। पहले में जितना उसका जघन्य काल था उसका ही चौथे का जघन्य अंतर हो जाएगा। नारकी की बात चल रही है, पहला और चौथा गुणस्थान नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है। अभी काल की भाषा में नहीं बोलना, अंतर की, अंतर नहीं है। और एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मोल, दोनों ही गुणस्थानों का अभी उत्कृष्ट बताएंगे। पृष्ठ संख्या 23 पर आते हैं। उपकसेन 33 सागरोवमानी देशुनानी। अब ये सामान्य से नारकियों की बात है, तो मिथ्यात्व का अंतर कब होगा? जीव सम्यक को प्राप्त करके वापस मिथ्यात्व में आ जाएगा। सातवें नरक में उत्पन्न हुआ, पर्याप्त हुआ, पर्याप्ति के बाद अंतर्मूर्त में विशुद्ध हुआ, सम्यक को प्राप्त किया। आयु के अंत में, क्योंकि अभी उसको मिथ्यात्व में जाना है, फिर आयु बंद करना है, फिर अंत में उसके बाद उसका मरण है, तो लास्ट में भी छोड़ देना है। तो कुछ कम 33 सागर, मिथ्यात्व का भी अंतर ऐसा है, सम्यक्त्व का भी अंतर ऐसा होगा। सम्यक्त्व का अंतर है वहां जाने के बाद सम्यक्त्व प्राप्त किया, फिर मिथ्यात्व में आ गया, मिथ्यात्व में आ गया, सम्यक्त्व का अंतर करना है। वो तो मिथ्यात्व का अंतर हुआ, अंतर कैसे गए? उसी गुणस्थान में वापस लाना है। अभी उसने चौथा प्राप्त किया तो फिर उसको भेजो ना मिथ्यात्व में, अंतर्मूर्त में, या फिर लास्ट में एक बार फिर और समय को प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में जाए। अभी हम पढ़ेंगे तो क्या लाएगा। पहले मिथ्या दृष्टि नारकी का ये हमने पढ़ा ना, मिथ्या दृष्टि और असह्य समय दृष्टि नारकियों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागरों को। जैसे पहले मिथ्या दृष्टि नारकी का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं, मोह कर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक सीरियंस अथवा मनुष्य नरक में उत्पन्न होने वाला, सातवें नरक में, वो बात बता रहे। और ये कौन सा लिया है? सादी मिथ्या दृष्टि 28 की सत्ता वाला, वो औपचारिक करने के लिए अलग अधिक टाइम। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ हमको अर्लीस्ट प्राप्त भी कराना है और नीचे यानी वो मिथ्या करने से सम्मिलित बनाना है। नीचे सातवीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न हुआ, छहों पर्याप्तियों से पर्याप्त होकर ये अंतर्मूर्त उसमें गया, विश्राम ले, बीच में अंतर्मूर्त फिर कुछ नहीं होता है। फिर विशुद्ध हो, विशुद्धि बढ़ती हुई उसके अंतर्मूर्त तक बढ़ेगी। वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर, अभी वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ तो मिथ्यात्व का अंतर हुआ, मिथ्यात्व छूट गया, समय दर्शन प्राप्त हुआ, मिथ्यात्व का अंतर चालू हो गया। वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर, पहले भी अंतर को प्राप्त हो शब्द पहले होना चाहिए, आयु के थोड़े अवशेष रहने पर ये बाद में करना, आगे के शब्द पहले लेना। ऐसे काग पद करके उसमें गोल राउंड करो, यानी आयु को थोड़े अवशेष रहने पर हम बाद में पढ़ेंगे, उसके आगे के तीन शब्द है ना अंतर को प्राप्त वो पहले पढ़ेंगे। यानी अभी पढ़ के ऐसा पढ़ेंगे, वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर अंतर को प्राप्त हो, आयु के थोड़े अवशेष रहने पर, ऊपर भी ऐसे है ना प्राकृत में, अधो सप्तमी पुढ़वी ने ऐसे वो वर्णों विस्तम तो विशुद्ध वेद का समयतम परिवज्य अंतरिदो अंतरिदो अंतर प्राप्त हो, और थोड़ा अवशेष आ हुए मिथ्यत्तम गर्व, आयु के थोड़े अवशेष रहने पर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। यह लास्ट वाला अंतर में इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ। अंतर के लिए फिर दोबारा उस गुणस्थान में लाना है, ये जरूरी नहीं कि हर जीव को फिर वो पहले भी मिथ्या तो नहीं जा सकते, सातवें नरक में तो मिथ्या तो नहीं जाना आवश्यक ही है, परंतु बहुत पहले भी मिथ्या कभी भी जा सकते हैं, हजार वर्ष रहकर भी जा सकते हैं। हमें मैक्सिमम उसको बिना मिथ्या तो के उसके समय तो नहीं रखना है। पुनः तीर्यंश आयु को बांधकर, क्योंकि बाद में कितने अंतर्मूत रहते हैं, तो मिथ्या तो नहीं आया, फिर तीर्यंश आयु बांधी उसने, क्योंकि सातवें नरक का नारकी तीर्यंश आयु ही बांधेगा, ये नियम है। वो मिथ्या तो नहीं बांधेगा, ये भी नियम। फिर विश्राम लेकर आयु बांधते ही समाप्त होते मरण कभी नहीं होता, वह अंतर्मुख फिर बीत जाएगा, फिर निकला। इस प्रकार छह अंतर्मुहूर्तों से कम 33 सागरोपम काल का उत्कृष्ट अंतर है। अब चौथे का अंतर देखें। चौथे के लिए वो मिथ्या तो नहीं जन्मा है, असंय समय ऋषि नारकी का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। मोह कर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक तीर्यंच अथवा मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव नीचे सातवीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न हुआ। छह पर्याप्तियों से पर्याप्त होकर विश्राम लेकर विशुद्ध होकर वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ। यहाँ तो पहले जैसा ही है, वेदक समय दृष्टि हुआ, अभी वहाँ अंतर्मुह तक समय दृष्टि रहेगा और फिर मिथ्या तो नहीं जाएगा। पुनः संक्लिष्ट हो मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अंतर को प्राप्त हुआ, यानी वेद समय तो में भी अंतर्मूर्त रहा फिर मिथ्यात्व को गया, यानी वो सम्यक्त्व का अंतर चालू हो गया। आयु के अंत में तीर्यंच आयु बांधकर पुनः अंतर्मूर्त विश्राम करके विशुद्ध होकर उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। क्यों उपशम सम्यक्त क्यों कहा? पहले तो वेदक किया था, अभी उपशम क्यों कहा? बोलो मनीषा भाई, वो कितना काल बीत गया? कुछ कम 33 सागर, पल्ले के असंख्यात भाग काल के बाद तो होगा, तो फिर औपशमिक समय तो ही होना पड़ेगा, क्योंकि उसकी उद्वेलना हो गई ना सारी प्रकृतियों से, अनादि जैसा हो गया वो, एक मिथ्या तो कर्म ही बाकी रहा उसका, तो अभी औपशमिक समय तो प्राप्त करेगा। इसे पहले आयु बांधा कर फिर उसको औपशमिक समय तो प्राप्त कराया। इस प्रकार इस गुणस्थान का अंतर लब्ध हुआ। अब उपशम समय तो के बाद फिर भी मिथ्या तो में आ जाएगा, पुनः मिथ्या तो को जाकर नरक से निकला, यानी मिथ्या तो में जाते ही एक समय में दो समय में नहीं मरेगा, फिर भी अंतर्मूर्त काल जाएगा वहां पर। आप कहेंगे सासादन में भेजो, सासादन में भी वहां से नहीं निकल सकता सातवें नरक से, उसको तो मिथ्या तो में जाना ही। इस प्रकार छह अंतर्मूर्त से कम 33 सागरोपम काल असंय समय दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर होता है। ऊपर भी छह अंतर्मूर्त से कम कहां पर, वहां अलग टाइप से था, वो आयु का बंध वगैरह बाद में किया था। अब यहाँ आगे बढ़ते 24 पृष्ठ पर आए, नारकियों में पहला और चौथा गुणस्थान की बात देखी हमने। अब शासन सम्मा दिट्ठि सम्मा मिच्छा दिट्ठिनम अंतरम केवचिरम कालाद हो दी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्नेन एक समयम। सासादन समय दृष्टि और समय मिथ्या दृष्टि नारकियों का अंतर कितने काल होता है? नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर होता है। नाना जीव समझते, अनेक जीव सासादन में थे नारकियों में, और वो सासादन में से मिथ्यात्व में चले गए, एक समय के लिए कोई भी नहीं था उसमें, ये हो सकता है, तो एक समय का अंतर कहेंगे। अधिक से अधिक हमने देखा था ना पल्ले का समय, ओघ में भी देखा था, वैसा यहाँ पर भी घटित होगा। कैसे? वो बाद में तीर्यंच आयु बांधी, इन्होंने पहले बांधी थी, परंतु पहले बांधी थी नहीं, पर उस उपशम सम्यक्त को भी प्राप्त हुआ ना यहाँ पर, और वहां से निकल के फिर अंतर्मूर्त रहा। किसमें? ये तो बीच में अंतर में ही सब हो गया ना, वो शुरुआत में एक बार सम्यक देखो इतनी इतनी आयु है, शुरुआत में एक बार सम्यक तो प्राप्त होकर छूट गया, पूरा मिथ्यात्व में रहा, मिथ्यात्व में रहते हुए ही आयु बांधी है, ये वो अंतर के काल में उसने आयु बांधी है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि था, यानी आयु बांधने के बाद फिर उसने उक्षण सम्यक तो प्राप्त किया, अंतर में ही उसने किया, इसलिए उसको अलग से नहीं गिनना है, उसको गिनना नहीं, क्योंकि बाद में फिर आयु बांधने का बाद में रखते तो और फिर अंतर मुहूर्त बाद में बढ़ जाते। हाँ ये हो गया, जब नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर होता है, उसका एक्सप्लेनेशन, जैसे नरक गति में स्थित सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि सभी जीव अन्य गुणस्थान को प्राप्त हुए, नाना जीवन की अपेक्षा बात देख रहे, और दोनों ही गुणस्थान एक समय के लिए अंतर को प्राप्त हो गए, अलग अलग समझना परंतु दोनों का कथन एक साथ हो रहा है। पुनः द्वितीय समय में कितने ही उपशम समय दृष्टि नारकी जीव सासाधन गुणस्थान को प्राप्त हुए, उसके लिए औपशमिक की कंडीशन, और मिथ्या दृष्टि तथा असंयत समय दृष्टि नारकी जीव सम्यक मिथ्या तो गुणस्थान को प्राप्त हुए, तीसरे में आने के लिए वो तो पहले से आ सकते हैं, चौथे से आ सकते। इस प्रकार दोनों ही गुणस्थानों का अंतर एक समय प्रमाण लब्ध हो गया, ये अनेक जीवन की अपेक्षा बात हो गई। अभी नाना जीवन की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर बताते हैं। उपकस्येन पलिदोवमस्य असंख्येन यदि भागो, उक्त दोनों गुणस्थानों का वो न करना बरोबर, उत्कृष्ट अंतर पल्लवों का असंख्यात्वा भाग है, जैसे नरक गति में स्थित सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि ये सभी जीव अन्य गुणस्थानों को प्राप्त हुए और दोनों ही गुणस्थान अंतर को प्राप्त हो गए, इन दोनों गुणस्थानों का अंतर काल उत्कर्ष से यानी मैक्सिमम पल्लवों के असंख्यात भाग मात्र होता है, पुनः उतना ही काल व्यतीत होने पर अपने अपने कारणभूत गुणस्थानों से उक्त दोनों गुणस्थानों के संभव हो जाने पर, इसका अर्थ ऐसा है कौन से गुणस्थान में से उसमें आ सकते हैं, अपने अपने कारणभूत गुणस्थान ने दूसरे में आने के लिए चौथा वाला औपशमिक समय दृष्टि आएगा, और चौथे से है ना एक ही है, और तीसरे में आने के पहले से आ सकता है, चौथे से आ सकता है, ये अपने अपने कारणभूत गुणस्थानों से। कोई भी जीव उस गुणस्थान में नहीं था, ओग में भी हमने ऐसा ही देखा था, गुणस्थान है चारों गति की अपेक्षा, आते रहे बाद में अंतर चालू हो गया, वो तो हमने काल में भी ऐसा ही देखा था, काल में भी लगातार कोई ना कोई रहेंगे तो भी वो काल पल्ले का संख्या होगा, और कोई एक भी जीव उसमें न हो तो भी वो पल्ले का संख्या होगा, काल भी उतना ही और अंतर भी उतना ही है। गुणस्थानों के अंतर में हमने ये देखा कि लगातार जो पल्ले का संख्या से भाग काल तक जिसका काल चल रहा था अन्य अनेक जीवों की अपेक्षा, बाद में उसमें अंतर चालू होता तो मैक्सिमम अंतर भी घटित हो जाता है, ये बात हमने वहां देखी थी। यानी इतने काल में औषमिक समय दृष्टि भले वहां हुए परंतु कोई सासाधन में नहीं आया, ऐसा लेना, औषमिक समय के बाद कोई मिथ्या समय गया, कोई तीसरे में गया, किसी का चौथा चालू रहा, यह हो सकता है, सासाधन में आया ही नहीं इतने काल तक कोई जीव। देखो उतना काल व्यतीत होने पर अपने अपने कारणभूत गुणस्थानों से उक्त दोनों गुणस्थानों के संभव हो जाने पर यानी उसमें आ जाने पर पल्लवों का असंख्यात भाग प्रमाण उत्कृष्ट अंतर लब्ध हो गया। ये समझ में आई बात, नाना जीवन की अपेक्षा कैसे सोचना है। अब 25 पृष्ठ पर आते हैं। एक जीवम पड़ुच्च जहन्येन पलिदोवमस्य असंख्येन यदि भागो, ये जघन्य की बात चल रही है, अंतो मुहूर्तम, तीसरे के लिए जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा यानी कोई एक जीव सासाधन में था, सासाधन में से मिथ्यात्व में ही जाता है, अब दोबारा सासाधन कब होता है उसको, दोबारा प्रथमोपशम करना चाहिए, और एक प्रथमोपशम के बाद बीच दोबारा प्रथमोपशम हो जाए तो बीच में पल्ले के असंख्या से भाग प्रमाण काल तक मिथ्या तो में रहना पड़ेगा। आप कहेंगे बीच में वेदक होगा, वेदक हुआ फिर भी उसको तो दोबारा मिथ्या तो में आकर उसको उद्वेलना करनी पड़ेगी। ये अर्लीस्ट हमको करना है ना, बीच में वेदक करेगा तो उसका अंतर बढ़ेगा, वो नहीं अभी हमें कुछ चाहिए, हमें तो अर्लीस्ट चाहिए, तो लगातार मिथ्यात्व में ही रखना है। देखो उक्त दोनों गुण स्थानों का जघन्य अंतर एक जीव की अपेक्षा पल्यपुंग का असंख्यात्व भाग और अंतर मूर्त है दूसरे के लिए और तीसरे के लिए, इसलिए और कह दिया। जैसे जैसा उद्देश्य है उसी प्रकार का निर्देश होता है, इस न्याय के अनुसार, यानी जिस क्रम से गुणस्थानों को बताए उस क्रम से उसके अंतर समझना। सासाधन सम्यक दृष्टि का अंतर पल्यपम का असंख्यात भाग और सम्यक मिथ्या दृष्टि का जघन्य अंतर अंतर मूर्त है, दोनों का ही जघन्य बताया। अब क्रमशः सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि इन दोनों गुणस्थानों का अंतर का उदाहरण कहते हैं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि नारकी जीव अथवा उपशम सम्यक्त्व के प्रायोग्य सादी मिथ्या दृष्टि नारकी जीव, अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक मिथ्या तो कर्म ही है तो उसके तो प्रथम उपशम सम्यक्त्व ही होगा, परंतु कोई सादी मिथ्या दृष्टि उपशम के योग्य उसका अर्थ क्या है? एक बार उपशम सम्यक्त्व होके छूट गया तो उसको वेदक योग्य कहते हैं, क्योंकि उसकी जो सम्यक प्रकृति यानी 28 की सत्ता वाला जिसको हम कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि, अभी वो डायरेक्ट सम्यक तो प्राप्त करेगा तो वेदक ही करेगा, परंतु मिथ्या तो में लगातार लंबे काल तक रहता है तो इन दो प्रकृतियों की उद्वेलना होती रहती है और करीबन सागर जितने रह जाएगी स्थिति तब वो अर्लीस्ट प्रथम उपशम कर सकता है। हाँ बोलो, कुछ फर्क नहीं है, एक ही बात है, वेदक कहो या क्षौक्षण को एक ही बात है। हाँ हाँ, पहले समय प्रकृति की उद्वेलना होती थी। हाँ वो दोनों की रहती, अर्लीस्ट दोनों ही भी सत्ता में, दोनों भी अभी उसकी उद्वेलना पूरी नहीं हुई, उसके पहले की बात है, दोनों की स्थिति समान रहेगी सागर जितनी।
आपने बताया कि एक सागर
कितनी सागरोपम पृथक तो भी कहते हैं उसको, वो तो हमने पहले पढ़ा था।
सागर तो आपने बताया,
नहीं करीबन एक सागर ऐसी बात करेंगे, यहाँ सागरोपम पृथक तो कहेंगे।
दूसरी बात, दूसरी लाइन में उपशम समय के लिए प्रायोग्य, प्रायोग्य का अर्थ क्या लेना?
वही मैं कह रही हूँ, वेदक योग्य काल और उपशम योग्य काल, वेदक योग्य काल पूरा हुआ यानी पल्ले के असंख्या से भाग पूर्ण हो गया, अभी वो क्या है, अभी वो करेगा तो उपशम सम्यक तो ही करना पड़ेगा, उसको कहेंगे उपशम सम्यक तो प्रायोग्य सादी मिथ्या दृष्टि। अर्लीस्ट कराना है ना, इसीलिए अभी तो एक नहीं, हाँ वेदक योग्य काल में उसका औपशमिक होगा ही नहीं, औपशमिक कब होगा, जब औपशमिक सागर पृथक का प्रमाण उसकी स्थिति रह जाएगी तब, क्योंकि वो एकेंद्रीय नहीं, अभी तो नारकी है तो सागरोपम पृथक में ही उसको दोबारा सम्यक तो होगा, क्योंकि पहले अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थिति थी, घटाते 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 पृथक सागर रह गई, तो अभी उसको जो होगा फिर से पढ़ते हैं इसको। देखो, एक अनादि मिथ्या दृष्टि नारकी जीव अथवा उपशम सम्यक्त्व के प्रायोग्य सादी मिथ्या दृष्टि, इसका अर्थ समझ में आया? आप लोग नए हैं ना, आपको जरा फिर दोबारा समझना पड़ेगा। एक बार सम्यक्त्व होके छूटा, सबसे पहली बार तो औपशमिक सम्यक्त्व ही होता है अनादि मिथ्या दृष्टि, औष्मिक समय को होता है तो प्रायोगिक लब्धि में अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण मिथ्या तो बन जाता है, सभी प्रणते हैं परंतु हम मिथ्या तो की बात करें। अब उस जीव को जब सम्यक हो जाता है तो पहले समय से मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति तैयार हुई, उसकी भी स्थिति कितनी होगी, जितनी मिथ्यात्व की उससे में बनेगी तो उसके भी अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसकी सत्ता बन गई सर। अभी वो जीव मिथ्यात्व में आ गया, मिथ्यात्व में आएगा तो नया मिथ्यात्व का बंध चालू हो गया, वो जो अंत कोड़ा कोड़ी से और ज्यादा भी बन सकता है, जितना बंधेगा उतना सत्ता में होगा, परंतु ये दो प्रकृतियां तो उतनी रहेगी, उसमें क्या होगा, अभी उसकी उद्वेलना चालू हो जाती है। उद्वेलना चालू होते हैं जैसे स्थिति कांडकों में हमने इतना इतना कांडक उसके निषेक नष्ट हो जाते हैं, अभी उसमें क्या होता है, इतने इतने कांडकों में से संक्रमण होता है, उद्वेलना इज संक्रमण, उल्टा मिथ्यात्व रूप होते, दोनों प्रकृतियां मिथ्यात्व रूप होती रहती है, उसको उद्वेलना कहते हैं। तो एक अंतर्मुहूर्त में पल्ले का असंख्या तो अभाग इतनी स्थिति कट डाउन हो गई, दूसरे अंतर्मुहूर्त में और पल्ले का असंख्या तो अभाग, तीसरे अंतर्मुहूर्त में इससे लगातार चलता ही रहता है, हर अंतर्मुहूर्त में उसका उद्वेलना चालू है। तो असंख्यात बार जब हो जाएगी अंतर्मुहूर्त तब जाके पल्ले प्रमाण स्थिति घटेगी, अंत कोड़ा कोड़ी यानी कितने करोड़ों सागर से अभी उसको कितना बनाना है, पृथक्त्व सागर बनाना है, कुछ सागर, तो कितने बार उसकी उद्वेलना होती रहती होती रहती होती रहती, उसके लिए पल्ले का असंख्यात भाग प्रमाण काल बीत जाता है जो असंख्यात वर्षों का होता है। तो असंख्यात वर्षों में उसकी उद्वेलना होती 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 अब इतने ये बीच वाले काल में यदि उसको सम्यक तो प्राप्त होना है तो हो सकता है। वो कैसे होगा, तीन प्रकृतियां पड़ी है, सम्यक प्रकृति का उदय होगा, बाकी दोनों पड़ी रहेगी सत्ता में, तो डायरेक्ट मिथ्यात्व में से वेदक सम्यक तो प्राप्त होगा उसको, इसको कहते वेदक योग्य काल। ये उद्वेलना होते 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 जब तक पृथक्त्व सागर प्रमाण स्थिति शेष न रह जाए तब तक उतने काल तक उसको वेदक सम्यक्त्व ही हो सकता है, इतने काल तक फिर दोबारा औष्मिक सम्यक्त्व नहीं हो सकता, इसलिए उसको कहते हैं वेदक योग्य काल। और अभी ये पृथक्त्व सागर बाकी रहेगी, अब यहां से उसको अगर सम्यक्त्व होगा तो औष्मिक सम्यक्त्व होगा, दोनों आता है, अभी ये नारकी है ना तो पृथक्त्व सागर लेना, एक इंद्रियों में जाकर वो सागर तक उसकी स्थिति घटा, हाँ अभी तो ये पृथक्त्व सागर यहाँ ले। इन जनरल जो हमने पढ़ा था आपने निकालो, वहाँ हमने दोनों ही बताया था, पेज नंबर 9 नंबर, उसका एक्सप्लेनेशन 10 नंबर पेज पर है, बीच वाला समाधान यानी सेकंड शंका समाधान है ना, उसकी तीसरी लाइन, उसमें क्या ऊपर क्या बताया था, वो अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति को घात करते करते जब तक सागरोपम से अथवा सागरोपम पृथक्त्व से नीचे नहीं करता, दोनों ऑप्शन बताए थे। अब ये नारकी है तो सागरोपम पृथक्त्व करके ही उसको औष्मिक सम्यक्त्व तो हो जाएगा। वो त्रसों में ही रहा तो होता है, त्रसों में तो सागरोपम पृथक्त्व और एक इंद्रिय में तो ऐसा कुछ है, अभी कभी आएगा एक इंद्रिय में पंच है, हाँ सागर है, समझ में आती बात, नहीं समझ। देखो एक इंद्रिय हो या नारकी हो, अभी उसने सम्यक तो प्राप्त ही नहीं किया तो पृथक्त्व सागर से सागर हो जाएगा, सागर से भी पल्ले हो जाएगा और नष्ट भी हो जाएगी, वो उसके लिए कोई बात नहीं है। परंतु ऐसा जीव अगर पंचेंद्रिय में है, कोई जीव पंचेंद्रिय में है और वो घटाते घटाते पृथक्त्व सागर तक आ गया, अब वो औष्मिक कर सकता है, परंतु वो घटाते घटाते एक इंद्रिय में पड़ा है तो एक इंद्रिय में पड़ा है तो और घटाते जाएगा तो सागर तक घटाया, और वो जीव अभी पंचेंद्रिय में आया तो उसको औष्मिक होगा, इसलिए वो सागर कह दिया।
हाँ
जो उक्षम सम्यक तो प्राप्त करके उसके मिथ्यात्व के तीन भाग हो जाते हैं,
सारी मिथ्या दृष्टि की बात करें।
हाँ, और फिर क्या होता है कि उसने वेदक योग्य काल में वेदक सम्यक तो प्राप्त किया, तो उसकी तो सम्यक प्रकृति की जो लेंथ है सत्ता में वो तो कम ही रहेगी ना के बाद।
नहीं नहीं देखो देखो, आपका ये प्रश्न है, कोई साधे में अभी जो पहले औपशमिक में से नीचे गया, फिर वेदक के योग्य काल में उसने फिर वेदक सम्यक तो प्राप्त किया, तो वेदक सम्यक तो प्राप्त किया तो प्राप्त करने के समय मिथ्यात्व की स्थिति कितनी थी?
अधिक थी।
तो देखो इसमें भी ऐसा है,
वो अधिक वाले जो वो भी तीन भाग हो जाते।
हाँ वो भी तीन भाग, यानी रेगुलर रेगुलर कंडीशन में अंत कोड़ा कोड़ी ले लेना रेगुलरली, पर जो बहुत बार ऊपर नीचे करता है वो मिथ्यात्व में आता है और संक्लेश परिणाम से 70 कोड़ा कोड़ी का बंध किया है, ऐसा जो भी अंतर्मुहूर्त में स्थिति कांड घात किए बिना सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। इसलिए सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त कम 70 कोड़ा कोड़ी सागर बताई गई है। जरा समय
औपचमिक समय तो प्राप्त करके उसके तीन भाग हो जाते हैं और वो मिथ्यात्व में आ जाता है, और फिर बाद में वेदक योग्य काल में वेदक सम्यक तो की प्राप्ति करेगा, उस समय जो मिथ्यात्व उसने बांधा था अधिक काल का,
हाँ।
तो अधिक काल का मिथ्यात्व का फिर तीन टुकड़े होते हैं क्या?
हाँ फिर तीन टुकड़े होते हैं।
हाँ बस बस, हाँ। नहीं तो फिर उसका वेदक सम्यक का काल ही थोड़ा रहेगा ना।
हाँ ऐसा नहीं होता, बीच में वेदक सम्यक तो प्राप्त किया तो फिर उसको मिथ्यात्व में आप पल्ले के असंख्यात भाग काल रहना पड़ेगा वो उद्वेल न करने के लिए। बीच में अगर वेदक होता रहेगा तो उसका वेदक योगी काल भी यानी वो तो बढ़ता रहेगा ना, उसे जितना मिथ्यात्व टर्न होते रहा उसका। बीच में अगर वो नहीं हुआ वेदक तो ही अर्लीएस्ट वो औपशमिक सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, बीच में अगर वेदक होता रहा तो औपशमिक सम्यक्त्व का अंतर और बढ़ेगा ना बीच में, क्योंकि जिस समय से उसने अंत कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व में वो उद्वेलना चालू कर दी है वो उद्वेलना का काल पूरा गिनना पड़ेगा। बीच में वेदक होता रहा तो उसका वो तो चलता रहे ना, कभी मिथ्यात्व में कभी वेदक सम्यक्त्व में कभी मिथ्यात्व में, वो तो हो सकता है ऐसा। हाँ हर बार, क्योंकि वो अंत कोड़ा कोड़ी तो होगी होगी, क्योंकि हर बार वहाँ देखो मिथ्यात्व में से वेदक सम्यक तो प्राप्त करता है तो दो करण होते हैं, परंतु जो बहुत बार हमने देखा ना अर्लीस्ट मिथ्यात्व का जघन्य काल देखा हमने, चौथे से आया और फिर वापस झट चला गया, तो बिना स्थिति कांडक घात के भी हो सकता है। ये स्थिति कांडक घात की कंडीशन शोभा आपके प्रश्न का उत्तर दे रही है, वो औपशमिक सम्यक्त्व के लिए तो मस्त है, और जो वेदक का काल है बहुत लंबे काल के बाद वो सम्यक प्राप्त कर रहा है तो दो करण तो होते हैं, परंतु बहुत बार उसके मिथ्यात्व सम्यक को चलता रहे तो बिना स्थिति कांडक घात किए 70 कोड़ा कोड़ी में केवल एक अंतर्मुहूर्त इसलिए बीता है कि उसके विशुद्धि के लिए उतना काल तो लगता है, अंतर्मुहूर्त इतने उसके निषेक यानी उसकी स्थिति घट गई, निषेक तो उसके थे नहीं मगर स्थिति घट गई आबादा काल में से, अब वो सारे निषेक पड़े हैं, अब वो जो सम्यक को प्राप्त करेगा वेदक सम्यक को तो उसकी मिथ्यात्व की स्थिति कितनी? 70 कोड़ा कोड़ी माइनस अंतर्मुहूर्त, उतने ही स्थिति वाले सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बनेंगे। ये हमने जयधवला में पढ़ा था, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति कितनी पाई जाती है, जयधवला में था कि महाबंध में? नहीं महाबंध में ना, जयधवला में ही था, जयधवला में ही था, वो स्थिति के विकल्प बताते हैं ना उसमें बताया। देखो वेदक योग्य काल का अर्थ ऐसा है, पहली बार सम्यक तो होके जीव नीचे आ गया मिथ्यात्व में, अभी उसके पास 28 की सत्ता है मुनि की, यानी दर्शन मुनि की तीन प्रकृतियां उसके पास पड़ी हैं, अब वो मिथ्यात्व में से डायरेक्ट सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, यानी सम्यक में क्या अवस्था होती है? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व पड़े रहते हैं और सम्यक प्रकृति का उदय होता है, ये समय प्रकृति उदय चलता है। अब ये जो मिथ्यात्व में आता है तो क्या हो जाता है, मिथ्यात्व का उदय है, समय प्रकृति और समय मिथ्यात्व एक समय ऊपर पड़ी है, यानी ये जो कभी भी मिथ्यात्व में आता है कभी भी समय समय जा सकता है, उसके लिए उसके कोई बहुत बार हमने देखा दृष्ट पथ है ऐसा कहते
हैं।
तो वेदक योग्य काल है, अभी वो क्या है, अभी मिथ्यात्व में आ गया ऐसा जीव लेते हैं, अभी उसके अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण तीनों की सत्ता है, सत्ता जब मिथ्यात्व में आया, अब अभी मिथ्यात्व का उदय है, मिथ्यात्व का उदय है तो नया मिथ्यात्व भी बनते जाएगा, ये कंडीशन है। अब उसमें क्या होता है कि इसके कांडक होते हैं, यानी इतने पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण जो निषेक है उसकी उद्वेलना होते होते ये मिथ्यात्व रूप होते चले जाते, मिथ्यात्व में संक्रमित होते, उल्टा संक्रमण है, इतना नष्ट हो गया अंतर्मूर्त में, फिर और अंतर्मूर्त में नष्ट हुआ, फिर अंतर्मूर्त में नष्ट हुआ, तो ऐसा कब तक चलेगा वेदक। तो इसके इन बिटवीन अगर उसको सम्यक्त्व होता है तो वेदक सम्यक्त्व ही होगा, क्योंकि इतनी लंबी स्थिति के साथ दो प्रकृतियों की स्थिति ज्यादा है अभी, क्योंकि अभी उसको उपशाना है तो तीनों को एक साथ उपशमाना पड़ेगा, तो तीनों को एक साथ अंतर करके उपशमाने की बात, इनकी स्थिति इतनी लंबी होती हुई नहीं हो सकता, अंत कोड़ा कोड़ी थी, घटते 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 मान लेते कि 50 सागर भी रह जाए तो फिर भी उसको एक साथ उपशमा नहीं सकता, और घटाते घटाते भी पृथक तो सागर जो कुछ पृथक प्रकार तो कुछ भी ले लो, हम 8 सागर लेते हैं, 9 सागर लेते हैं, अब ऐसी कंडीशन है, अब इसको अगर सम्यक तो प्राप्त कराना है तो अभी इस तीनों को उपशमा सकता है, यानी वो अंतर करके फिर उसका उपशम करेगा, ये बात अभी पॉसिबल है, यानी यहाँ पर भी वो अंतर कोड़ा कोड़ी की मिथ्यात्व की करेगा और बाकी जो उपशम जो पंचलब्धि में जो हमने देखे प्रायोग लब्धि करण लब्धि वो सारे प्रोसेस यहाँ हो जाएगा, वही चल रही बात। ये उपशम सम्यक तो कब होगा, जब ये घटते घटते इतनी स्थिति हो जाएगी तब उपशम, उसके पहले क्या होगा, जब तक वो सागर पृथक प्रमाण नहीं रहती है तब तक उसको वेदक योग्य काल कहते हैं, इतने काल में इसको अगर सम्यक तो हो जाए तो वो वेदक सम्यक तो ही होगा, उपशम सम्यक तो नहीं हो सकता, तो जब अर्लीएस्ट हो सकता है तब उसको उपशम प्रायोग्य काल कहेंगे, उसके पहले का काल है वेदक योग्य काल, समझ में आई बात शोभा, समझ में आई बात, थोड़ी थोड़ी कोई बात नहीं, अभी फिर देखो फिर पढ़ते 25 पेज पर, ये नीचे के पैराग्राफ की सेकंड लाइन, एक अनादि मिथ्यादृष्टि नारकी जीव, अनादि का है तो बस डायरेक्ट औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, अथवा उपशम सम्यक्त्व के प्रायोग्य साधी मिथ्यादृष्टि नारकी जीव, ये समझ में है ना, 28 की सत्ता है परंतु भी उपशम के योग्य है, अभी ये भी हो सकता है कि उसका बहुत कुछ कम वो अंतर के बाद में जो सम्यक को प्राप्त कराना है तब हम पृथक सागर कहेंगे, अभी ऐसा भी हो सकता है कि उसकी स्थिति पल्ले प्रमाण ही रह गई हो या सादी मिथ्या दृष्टि है और बिल्कुल दोनों की सत्ता नष्ट हुई हो, तो उपशम प्रायोग्य है वो, बस इतना ही लेना, पहली बार समय को प्राप्त कराना है, दोबारा अर्लीएस्ट प्राप्त करते समय हम देखेंगे पृथक सागर वाली, अभी ऐसा भी हो सकता है ना सादी मिथ्या दृष्टि है, ऐसा आपने जो पूछा था समय प्रकृति तो नष्ट हो गई है, समय मिथ्यात्व ही है उसके, यानी उसकी सत्ता में मिथ्यात्व और समय मिथ्यात्व दो ही है, ऐसा भी हो सकता है, वो सारे अभी वो सारे क्या है उपशम प्रायोग्य है, शुरुआत पहली बार उपशम समय तो प्राप्त कराना है ना नरक में जाने के बाद, तो उसको हम उपशम प्रायोग्य कहेंगे, ऐसा भी होगा सादी मिथ्या दृष्टि है पर वो उद्वेलना पूरी हो चुकी है तो आके उसको थोड़े अनादि कहेंगे अनादि जैसा होगा अनादि नहीं कहेंगे उसको, सही नहीं उपशम, हाँ उपाच का करेगा, तो वो सारे को 5 हो या 6 हो या 7 हो उपशम प्रायोग्य, ये उन्होंने शब्द यूज किया यहाँ, अब दोबारा उसको उपशमित करना है तब हम कहेंगे वो सागरोपम पुरुषत्व की कंडीशन, क्योंकि अर्लीस्ट कराना इसलिए। कर सकते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि वेदक योग्य, वेदक योग्य एक बार समय से छूट के आया है, अभी जब तक अपल्य का असंख्यात विभाग काल नहीं बीत जाता तब तक वो वेदक योग्य काल है, उसके बाद अगर उसको करना है तो औपशमिक करना ही पड़ेगा उसको। चल में ही बस ये तो उसके उद्वेलना कांडक जल्दी हो जाते, स्टार्टिंग में तो समान ही होते, बाद में उसके कांडक जल्दी पूरे हो जाते। उसके कांडक भी बड़े होते हैं। अभी उसमें बहुत जैसे एक सपना में भी यही बात होती है, सपना में होते फिर उसमें भी वो सम्यक प्रकृति क्यों रहती है अकेली बाद में, इसके बड़े बड़े कांडक होते हैं, उसका लास्ट कांडक रह जाता है, इसमें भी ऐसा ही उद्वेलना भी ऐसे ही समझना। आपने कुछ बोला? हाँ आगे बढ़ते। उपशम सम्यक के प्रायोग्य सादी मिथ्या दृष्टि नारकी जीव, ये समझ में है ना, पहली बार उपशमिक कराने तो उसकी वो दो प्रकृति उनकी कितनी सत्ता बाकी उसके कई उसका विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है अकेला मिथ्या तो उसका रह गया है, उद्वेलना पूरी हो गई है, हो सकता है सम्यक मिथ्या तो नहीं रहा, अकेला सम्यक मिथ्या तो रहा और सम्यक प्रकृति नष्ट हो, ये हो सकता है कुछ भी। अब उसने पहली बार औपशमिक समय को प्राप्त किया तो तीनों करणों को करके यानी सारे पंचलब्धि वाली वो सारी कंडीशंस वहां लागू हो जाएगी। उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ और उपशम सम्यक्त के साथ कितने ही काल रहकर पुनः सासादन गुणस्थान को जाकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। देखो हमें अंतर बढ़ाना है इसलिए उसको सासादन में ला रहा है और फिर मिथ्यात्व में भेज दिया। पूरा उपशम का काल वो तो छह अवली और बढ़ जाए ना, इसलिए छह अवली जल्दी उसको नीचे लाया तो अंतर चालू हो गया। इस प्रकार अंतर को प्राप्त होकर पल्लोपम के असंख्यातवे भाग मात्र काल से उद्वेलना कांडकों से, ये कांडक समझ में आते हैं क्योंकि एक कांडक होता है पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण, ऊपर के इतने निषेकों के जितने परमाणु है उनका संक्रमण होकर मिथ्यात् रूप हो जाते हैं, उसको कहते हैं कांडक। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व इन दोनों प्रकृतियों की स्थितियों को यानी उनके जो निषेक है उनको सागरोपम पृथक्त्व से नीचे अर्थात कम करके, ये समझ में आई बात, एक कांडक पल्ले का असंख्यात अभाव ऐसा दूसरा कांडक तीसरा कांडक होते 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 इतने कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति घटकर किसकी घट रही है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व तो नया नया बन रहा है, वो तो अनेक कोड़ाकोड़ी सागर का रह सकता है परंतु ये तो इनकी स्थिति घट रही है। सागरोपम पृथक्त्व से नीचे अर्थात कम करके पुनः तीन करण करके, क्योंकि उनको आप कहेंगे इतने कम होने के बाद सम्यक तो होगा ही, ये जरूरी नहीं, अगर हो सकता है उसने वो सारा कंडीशन लगा लेना उसके पुरुषार्थ के पूर्वक तो ये अर्लीस्ट वो अभी सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, तो उसके लिए भी तीन करण हो गए यहाँ पर। तो कहते पुनः तीन करण करके और उपशम सम्यक्त को प्राप्त करके उपशम सम्यक्त के काल में छह आवली काल अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थान को प्राप्त हुआ, क्योंकि हमें सासादन का अंतर देखना है। अगर औपशमिक सम्यक्त का अंतर देखना होता तो बस उपशम सम्यक्त को प्राप्त किया वहां रुक जाते हैं, यहाँ दोबारा सासादन में लाना है। यहाँ छह अवली क्यों लिया, एक समय लेते जगन्य जगन्य हाँ जगन्य उत्कृष्ट के लिए हम वो एक समय ही लिखते। अच्छा पहले कितने ही काल रहकर बात बताई थी जघन्य अंतर के लिए, तो एक समय पहले ही सासागर में गया। इस प्रकार पल्लवपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण अंतर काल उपलब्ध हो गया। अंतर मिनिमम करना है, चौथी लाइन में वह एक समय में उसको भेजना चाहिए एक्चुअली, वहाँ छह नहीं। कितने ही काल तक रहकर सासागन को जाकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। एक्चुअली वहाँ पर कोई संबंध ही नहीं है। क्यों नहीं मैं बताती हूँ, देखो नहीं, छह लावली हो या एक समय हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सासागन छूटने के बाद अंतर शुरू हुआ है। देखो पहली बार, पहली ये उसका औपशमिक समित्व का काल है, और उसका एक समय होगा या छह आवली होगा सासादन का काल, जो कुछ है वो काल पूरा होने के बाद हमने शुरू गिनना शुरू किया। यहाँ से गिने तो यहाँ से पल्ले का संख्या ज्यादा, यहाँ से गिने तो यहाँ से पल्ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर बाद में है वो तो अर्लीएस्ट उसको सासादन में लाना है, तो वहां तो छह आवली की बात, क्योंकि उसको सासादन छूटा और सासादन प्राप्त हुआ उसमें से मिनिमम अंतर देखना है, तो वहां लास्ट में उसको छावली, ऊपर की कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि सासादन छूटने के बाद हम अंतर को गिनना चालू करेंगे।
तो कितने अंतर में आ जाएगा वापस सासादन में?
ऊपर जो चौथी लाइन में है उपशम संगति के साथ कितने ही काल रहकर सासादन को प्राप्त हुआ, वो भले एक समय हो या छह आवली हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर कब शुरू होगा? सासादन से मिथ्यात्व में आया तब हमने अंतर गिनना चालू किया। कौन सा कहाँ? चौथी, ये लास्ट में तो अंतर बढ़ गए, अंतर बढ़ जाएगा। हमें तो मिनिमम अंतर चाहिए, जघन्य अंतर चाहिए। मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ तब से अंतर गिनना चालू किया। ऊपर जो चौथी लाइन में सासादन का काल एक समय से छह अवली कुछ भी हो सकता है। यानी उसमें से मिथ्यात्व शुरू होने पर उसका अंतर हमने गिनना चालू किया। मिथ्यात्व में आकर अंतर चालू हो गया। और लास्ट में तो छावली बताया उन्होंने, ये छावली तो वहां कंडीशन जरूरी है, क्योंकि हमें मिनी अर्लीएस्ट सासादन में लाना है, इसलिए समझ में आई बात। अब सम्यक मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं, नीचे से तीसरी लाइन में, एक सम्यक मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्व का अथवा सम्यक्त्व को प्राप्त होकर और वहां पर अंतर्मूर्त का अंतर देकर पुनः सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। इस प्रकार सम्यक मिथ्यादृष्टि का अंतर्मूर्त प्रमाण अंतर लब्ध हो गया। ये मुंह के ऊपर रफार के अंदर बिंदी नहीं चाहिए। अब 26 पेज पर आते हैं। ये तो हमने मिनिमम अंतर देखा, सासादन के लिए पल्ले का असंख्या भाग और तीसरे के लिए अंतर्मूल। अब एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर देखना है। हमने ओघ में कितना देखा था याद है? अर्ध पुद्गल परिवर्तन कुछ। अब यहाँ हम नारकी को नारकी रखना है, वो नारकी से अन्य भाव में नहीं भेजना है, एक ही भाव में, तो शुरुआत में एक बार और लास्ट में एक बार ऐसा करेंगे। उपकसेन 33 सागरोपमानी देशुनानी, उन दोनों गुणस्थानों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागरोपम काल है। अब ये बताएंगे, जैसे एक सादि अथवा अनादि मिथ्यादृष्टि जीव सातवीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न हुआ, जैसे अभी हमने देखा था, छह पर्याप्तियों से पर्याप्त होकर अंतर्मूर्त विज्ञान। देखो वहाँ पहले जो कंडीशन थी वहाँ कब किया क्या किया उसकी कंडीशन नहीं थी, एक बार हुआ दूसरी बार हुआ, बीच में पल्ले का असंख्यात भाग बिताना था, एट एनी पॉइंट हो सकता था। अब यहाँ क्या करना है, उत्कृष्ट अंतर चाहिए, तो अर्लीएस्ट औपशमिक प्राप्त करेगा और अर्लीएस्ट आसाधन में आएगा और वहाँ बीत जाएगा। अभी हम देखते, देखो सातवीं पृथ्वी के नारकीय में उत्पन्न हुआ, छह पर्याप्तियों से पर्याप्त होकर एक अंतर्मूर्त गया, विश्राम ले दूसरा अंतर्मूर्त, विशुद्ध हो गया तीसरा अंतर्मूर्त गया, उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, यानी उपशम सम्यक्त में भी अंतर्मूर्त रहा, पुनः सासादन गुणस्थान में जाकर मिथ्यात्व को प्राप्त हो अंतर को प्राप्त हुआ। यानी यहाँ सासासन के बाद उसका अंतर गिनना चालू किया, आयु के अंत में तिर्यंच आयु बांध कर विशुद्ध हो उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। हमने ये चौथे के अंतर में भी देखा था ना, ये पुनः उपशम सम्यक्त के काल में एक समय अवशेष रहने पर सासादन गुणस्थान को प्राप्त हुआ। अभी यह एक समय लिया, अंतर बढ़ाना है, इसलिए ख्याल में बस फिर से पहले वाला समझ में आया, कोई जीव मिथ्यात्व के साथ सातवें नरक में उत्पन्न हुआ, पर्याप्ति के लिए एक अंतर्मूर्त जाता है, पर्याप्ति पूरी होते ही ताबड़तोब उसको समय को नहीं हो सकता, एक अंतर्मूर्त बीच में और चला जाता है, फिर उसकी विशुद्धि बढ़ती है क्योंकि समय को होने के पहले विशुद्धि का बढ़ता हुआ अंतर्मूर्त हो जाता है, तो उसके लिए एक अंतर्मूर्त गया, फिर औपशमिक समय को प्राप्त किया, औपशमिक में से गिर कर सासादन में आया और सासादन जब छूटा तब अंतर चालू हो गया। ख्याल में है ना, छूटने की कंडीशन है। अब यहाँ पर भी एक समय में वो आए या छियावली आए, छूटने का समय तो वही है, एक समय पहले आएगा तो एक समय में छूटेगा, छियावली पहले आएगा तो छियावली के बाद छूटेगा, छूटने का समय वही है जो उपशम सम्यक्त का पूरा काल है, इसलिए वहाँ कोई कंडीशन नहीं डाली एक समय की अथवा छियावली की। समझ में आती है बात, फिर एक समय लास्ट में रखना है, पहले नहीं, हम शुरुआत के प्रथम उपशम सम्यक्त की बात करते हैं। ये देखो इतना प्रथम उपशम सम्यक्त का पूरा काल है, अगर वो सासादन में नहीं आता तो इतने काल तक रहता। अब सासादन में कौन आता है, एक समय पहले भी आ सकता है या छह अवली पहले भी आ सकता है, तो एक समय पहले आने वाला का भी यहाँ से ही मिथ्यात्व चालू हो गया और छह अवली पहले आने से वाला का भी यहाँ से ही मिथ्यात्व चालू हो गया। इसका सासादन का काल ज्यादा हो गया, पर सासादन छूटने का काल तो एक ही दोनों का, जो एक समय पहले सासादन में आया वो एक समय के बाद ही मिथ्यात्व में जाएगा, छह आवली वो पहले वो मिथ्यात्व सासादन में, काल में फर्क पड़ा, अंतर में कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ा। ये स्टार्टिंग वाली पोजीशन, अभी लास्ट वाली पोजीशन, एंडिंग में उसको कैसा है, ये एंड वाला उसका औपशमिक सम्यक्त्व है। अब एंड में अगर वो एक समय पहले आता है तो उसका ये पहले आया और छह आवली पहले वाला यहाँ से आया, तो यहाँ से दोनों की पोजीशन एक ही है, इसको अंतर बढ़ाना है तो एक समय वाला लेना चाहिए। अभी समय में आया ना, इतना एक एक समय कितना विचार पूर्वक लिखा है ना, तो लास्ट में एक समय, ये पढ़ने के बाद हम विचार करते हैं, पहले हमको ऐसे विचार नहीं आते हैं, और आपको नहीं समझता तो और ज्यादा हम सोचते फिर उसके ऊपर नहीं इसीलिए ये एक, क्योंकि देखो कभी भी उसके कितना भी सासादन का काल कितना ही हो, जितना अर्लीएस्ट वो सासादन में गया है उतना ज्यादा सासादन में रहेगा, क्योंकि जो उपशमित है मिथ्यात्व समय प्रकृतियां वो इसी पॉइंट के बाद ही वो नीचे आएगी और उदय चालू हो जाएगा। ये अभी समझ में आया ना। यानी एक समय वाला जल्दी मिथ्यात्व में जाएगा ऐसा नहीं है, उसका साधन का काल छोटा है, बाकी काल उसने औपशमिक समय में बिताया। इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ एक समय अवशेष रहने पर, यानी उसका अंतर समाप्त हुआ, प्राप्त हुआ ना, हमको मिल गया टोटल। अब उसके बाद क्या क्या करेगा, वो पुनः मिथ्यात्व को जाकर अंतर्मूर्त रहकर निकला यानी मरा। इस प्रकार समय अधिक 5 अंतर्मूर्त से कम 33 सागरोपम काल सासद गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतर है। अंतर की बात, शुरुआत में प्रथम उपशम प्राप्त करके सासाधन में गया था, सासाधन से मिथ्यात्व में गया तब अंतर शुरू हुआ, लास्ट में आयु व्यु पहले बांध के लिए उसने, और बाद में उसने औपशमिक समय को प्राप्त करके फिर एक समय पहले सासाधन में आया। उसके बाद कितना अंतर छोड़ना, मिथ्यात्व में जाएगा फिर अंतर्मूर्त के बाद मरेगा। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं, किसमें बात चल रही याद है ना, नारकी में। अब यहाँ मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता रखने वाला एक तिर्यंच अथवा मनुष्य सातवीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न होकर, क्योंकि पहले गुणस्थान से तीसरे में भेजना है तो 28 की सत्ता वाला चाहिए, 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, क्योंकि अंतर ज्यादा बढ़ाना है ना, वहां पर भी समय तो में ऐसे भी गिर कर तीसरे में आ सकता था, परंतु हमको वो जरूर चाहिए अर्लीस्ट तीसरा गुणस्थान प्राप्त करें, फिर तीसरे में से मिथ्या तो में और फिर लास्ट में जाके वो तो फिर तीसरा प्राप्त करा दे। तो कहते 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हो। डायरेक्ट सम्यक मिथ्यात्व को, क्योंकि सादी मिथ्या दृष्टि है, 28 की सत्ता है, मिथ्या तो समय प्रकृति सत्ता में पड़ी रहेगी, समय मिथ्यात्व का उदय होगा पहले से तीसरे में, सादी मिथ्या दृष्टि पहले से तीसरे में गया। पुनः सम्यक्त्व को अथवा मिथ्यात्व को जाकर, या तो समय दृष्टि हो गया या मिथ्या दृष्टि हो गया, मिथ्या दृष्टि मिथ्या तो में ही रहा, समय दृष्टि समय तो में ही रहा। देशों ने 33 सागरोपम प्रमाण आयु स्थिति को अंतर रूप से बिताकर, ये भी हो सकता है कि समय दृष्टि होकर मिथ्यात्व में भी जाए बीच में, मिथ्यात्व के द्वारा आयु को बांधकर विश्राम ले, सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। पश्चात मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अंतर्मूर्त रहकर निकला। अब देखो, लगातार अगर मिथ्यात्व में रखते हैं तो बीच में प्रथम उपशम समय को भी प्राप्त करना पड़ेगा उसको, मिथ्यात्व में से फिर जाना है, या प्रथम उपशम प्राप्त करा के बाद में समय उसको तीसरे में ला सकते हैं। लगातार समय तो रहे तो चौथे से तीसरे में आ ही सकता है, कैसा बढ़ेगा हाँ, यानी उसके बीच में कभी भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बीच में कभी उसको समय पर भी हुआ मिथ्यात्व में भी हुआ तीसरे में नहीं गया, ऐसा जीव लेना है, क्योंकि मिथ्यात्व में लगातार रहेगा तो उसको ड्यूल ना हो जाएगी, 28 की सत्ता वाला नहीं रहेगा तो उसको मिथ्यात्व में से नहीं भेज सकते, तो बीच में कभी समय को भी प्राप्त कराना पड़ेगा। ये सभी कंडीशन नहीं लिखी है पर हम समझ सकते हैं, उसकी जरूरत भी नहीं थी पर हम सोच सकते हैं ना, क्योंकि बीच वाले बीच में उसने प्रथम उपशम किया उसके पहले, वो तो अंतर चालू या अंतर में कुछ भी हो सकता है उसका, या बहुत बार वो वेदक में रहा ऐसा भी हो सकता है, लगातार इतने काल तक तो रह ही सकता है वेदक समय में, तीसरे में जाके लास्ट में जाके आया उसका। अब उसमें भी वो तो अभी लगातार सम्यक्त्व में रखकर उसको लास्ट में तीसरे में नहीं लाना है, क्योंकि उसको आयु का बंधन मिथ्यात्व में ही कराना है, तो हाँ शुरुआत में उसको मिथ्यात्व में ला के आयु बंध करा के फिर उसको, यानी सादी मिथ्या दृष्टि है उसको फिर तीसरे में भेजना।
हाँ
हाँ, क्योंकि वो उतना छोड़ना पड़ेगा ना बाद में। बाद में मिथ्या तुम्हें आयु बंद कराना है, इसलिए पहले मिथ्या तुम्हें आयु बंद करा के बाद में उसको तीसरे में ले जाना। हाँ, मिथ्यात्व में ही आयु बंद होता है, तो नियम है उसका, तीसरे में आयु बंद नहीं होता। हाँ, इसलिए चौथे में से उसको मिथ्यात्व में ही लाना पड़ेगा। सम्यक कहते मिथ्यात्व जाकर देशों ने 33 सागरोपम आयु स्थिति को अंतर रूप से बिताकर मिथ्यात्व के द्वारा आयु का बांध का। विश्राम ले समय मिथ्यात्व को प्राप्त हो, इसलिए मैंने कहा मिथ्यात्व में से उसको भेजना है। तो पूरे पहले से मिथ्यात्व में से अगर भेजते हैं तो फिर भी भेजते हैं तो उसको फिर प्रथम उपशम करा के फिर उसके बाद उसको तीसरे में ला सकते हैं। ये सब कंडीशंस अप्लाई। पश्चात मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अंतर्मूर्त रहकर निकला, यानी समय मिथ्यात्व का अंतर्मूर्त और बाद में मिथ्यात्व में अंतर्मूर्त और फिर मर गया। समय मिथ्या तो प्राप्त होते ही अंतर तो समाप्त हो गए, इसलिए उसके बाद समय मिथ्यात्व का काल गिनेंगे और फिर मिथ्यात्व का काल गिनेंगे। इस प्रकार 6 अंतर्मूर्त से कम 33 सागरोपम काल समय मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर होता है। ये समझ में आई ना बात? बीच में समय दृष्टि रहा तो भी मिथ्यात्व में ले जाना चाहिए आयु बंद कराने के लिए। आप कहीं लगातार मिथ्यात्व में रहा तो लगातार मिथ्यात्व में रहा तो मिथ्यात्व में आयु बंद कराओ, फिर प्रथम उपशम कराओ और फिर उसको समय मिथ्यात्व में ले जाओ, वो भी चलेगा। सत्ताईस नंबर पुष्प पर आते हैं। तो ये हमने इन जनरल सभी नारकियों की अपेक्षा बात की, तो उत्कृष्ट अंत तो सातवें नरक में ही घटित होता था। अब एक एक नरक की अलग बात करेंगे, तो उस नरक की जितनी उत्कृष्ट आयु है उसकी अपेक्षा से बात करनी पड़ेगी अंतर घटित करने के लिए। और अंतर इन्हें पहले उस गुणस्थान में लाना, वहां से अन्य गुणस्थान में भेजना, फिर वापस उसमें लाना, ये कंडीशन है वहां पर। अब पढ़मादि जाव सप्तमीय पुढ़वीय नैरयेसु मिच्छादिट्ठि असंजय संवादिट्ठिनम अंतरम केवचिरम कालादोहोदी नाना जीवम पड़ुच्चन अति अंतरम निरंतरम। पहले और चौथे गुणस्थान वाले हमेशा ही पाए जाएंगे, उसमें कोई अंतर नहीं है। प्रथम पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि जीवों का अंतर कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, निरंतर है। क्योंकि सातों पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टियों से रहित नारकियों की सदा उपलब्धि नहीं होती, हमेशा ही उसमें असंख्यात नारकी होगी। समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि तो होगी ही होगी। एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन अंतो मुहूर्तम। उक्त दोनों गुणस्थानों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, वो किसी भी नरक में समान होगी बात। क्योंकि मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि इन दोनों को ही अन्य गुणस्थान में ले जाकर सर्व जघन्य अंतर्मूर्त काल से पुनः उसी गुणस्थान में पहुंचाने पर अंतर्मूर्त मात्र काल का अंतर पाया जाता है। इसका अर्थ समझते हैं? पहले वाले को तीसरे में ले जाकर पहले फिर वापस लाओ पहले में, या चौथे में ले जाकर फिर चौथे के लिए ऐसा ही करना। उपकसेन सागरोमन तिन्नी सत्त दस सत्तारस बावीस तेतीस सागरोमानी देशुनानी। उक्त दोनों गुणस्थानों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर देशों न देशों ने कुछ कम। अब एक एक जो नरक की आयु है उत्कृष्ट उसको बताएंगे। तो एक सागरोपम, एक के बाद में कॉमा नहीं चाहिए, सागरोपम के बाद कॉमा चाहिए। एक सागरोपम तीन सात दस सत्रह बाईस और तैतीस सागरोपम काल है। एक्चुअली एक के बाद सागरोपम नहीं लिखते तो भी चलता। एक तीन सात दस सत्रह बाईस और तैतीस सागरोपम ये उत्कृष्ट अंतर वहाँ है। यहाँ पर तीन आदि संख्याओं में सागरोपम शब्द प्रत्येक पर संबंधित करना चाहिए। ऊपर भी उपकसेन सागरोपम उन्होंने लिखा था, एक सागरोपम फिर तीन नि सत्य वगैरह वगैरह, जैसा उद्देश्य होता है वैसा निर्देश होता है। इस न्याय से प्रथम पृथ्वी में देशों ने एक सागरोपम, देशों ने कुछ कम, द्वितीय पृथ्वी में देशों ने तीन सागरोपम, तीसरी पृथ्वी में देशों ने सात सागरोपम, चौथी में देशों ने दस सागरोपम, पांचवी में देशों ने 17 सागरोपम, छठी में देशों ने 22 सागरोपम और सातवीं में देशों ने 33 सागरोपम अंतर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि प्रथम और चतुर्थ इन दोनों गुणस्थानों का सातवीं पृथ्वी में देशों का प्रमाण 6 अंतर्मुहूर्त मात्र है, वह नारकियों के ओग वर्णन में कहे आए हैं, इसलिए यहाँ नहीं कहते। शेष अर्थात प्रथम से लगाकर छठी पृथ्वी तक की 6 पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि नारकियों का उत्कृष्ट अंतर 4 अंतर्मुहूर्तों से कम अपनी आयु स्थिति प्रमाण है। क्योंकि यहाँ क्या है कि वहाँ मिथ्या तुम्हें जाना, फिर वो आयु बंद वगैरह की कंडीशन थी, अब यहाँ प्रथम उपशम प्राप्त कराओ और सासागन में भेजो और सासागन में मरकर बाहर निकालो, ये भी हो सकता है। छठी पृथ्वी तक के नारकी वहाँ क्या सम्यक तुम्हें से मिथ्या तुम्हें अगर जाता है तो अंतर्मुहूर्त रहकर फिर मरने होता है, यहाँ वो बात जरूरी नहीं
है।
हाँ इसलिए यहाँ 4 अंतर्मुहूर्त हुए, वहाँ 6 अंतर्मुहूर्त भी होते हैं, क्योंकि आयु बंद और फिर अंतर्मुहूर्त रुक के फिर मरण, ऐसा वहां होता है। शंका, वे 4 अंतर्मुहूर्त कौन से हैं? समाधान, 6 पर्याप्तियों के सम्यक निष्पन्न करने में एक, विश्राम में दूसरा, विशुद्धि को आपूर्ण करने में तीसरा, आपूर्ण पूर्ण करने के लिए। ये 3 अंतर्मुहूर्त तो वहां पर भी देखे थे हमने, और आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त होने का 4 अंतर्मुहूर्त है। ये मिथ्या दृष्टि के लिए बताया, मिथ्यात्व का अंतर, मिथ्यात्व में आते ही उसका अंतर समाप्त हो गया, लास्ट में अंतर्मुहूर्त उसका मिथ्यात्व का लिया। असंयत समय दृष्टियों का, शेष पृथ्वियों में 5 अंतर्मुहूर्त से कम अपनी अपनी आयु स्थिति प्रमाण अंतर होता है। यहाँ क्या किया, उसको सम्यक तो प्राप्त करा के फिर मिथ्यात्व में ले गए थे, नहीं तो नहीं, मिथ्या दृष्टि था और सम्यक तो प्राप्त किया था, तो मिथ्यात्व का अंतर चालू हो गया था। अब वहां क्या करना है, मिथ्यात्व में ही जन्मा है, सम्यक तो प्राप्त कराना है, फिर मिथ्यात्व में ले जाना है, तो सम्यक तो का अंतर एक अंतर्भूत बढ़ जाएगा उसका। देखो फिर पढ़ते हैं, वही इस प्रकार है, मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक तिर्यंज अथवा मनुष्य प्रथम पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी तक कहीं भी उत्पन्न हुआ, 6 के लिए वही कंडीशन है, 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ एक अंतर्मुहूर्त, विश्राम ले दूसरा अंतर्मुहूर्त, विशुद्ध हो तीसरा अंतर्मुहूर्त, सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ यानी 4 अंतर, वहाँ सम्यक्त्व को प्राप्त होते ही उसका मिथ्यात्व का अंतर चालू हो गया था, वहाँ 3 ही अंतर्मुहूर्त छोड़े थे, यहाँ सम्यक्त्व में भी अंतर्मुहूर्त रहेगा, बाद में मिथ्यात्व में आएगा तब जाके उसका अंतर चालू हो गया। पुनः सर्व लघु काल से मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हुआ और अपनी स्थिति प्रमाण, स्थिति यानी जो आयु प्रमाण, मिथ्यात्व में रहकर उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, ये 5वां अंतर्मुहूर्त, छठे के बदले 5 नंबर देना, यानी आयु के अंत में उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त कराया, क्योंकि सागर प्रमाण है वो मिनिमम भी आयु, तो पहला जो उसका जो था वेदक प्राप्त करा के छूटा था, अब सारी विद्वेल ना हो गई उसकी, अभी उसको औक्षमिक समय को प्राप्त कराया लास्ट में, और उसमें भी सासागन को प्राप्त कराया, पुनः सासागन गुणस्थान में जाकर निकला, वहां तो सासागन में जाते वो सासागन के साथ मरण हो सकता है उसका। इस प्रकार 5 अंतर्मुहूर्त से कम अपनी अपनी पृथ्वी की स्थिति वहाँ के असंयत समय दृष्टियों का उत्कृष्ट अंतर होता है। ये समझ में आई बात? मैंने शुरुआत में उसने पर्याप्ति पूर्ण की, विशुद्धि हुआ, नहीं विश्राम लिया, फिर विशुद्ध हुआ, फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया, फिर मिथ्या समय आया तो सम्यक्त्व का अंतर चालू कर दिया। सम्यक्त्व का अंतर हुआ है ने, वो अंतर कब मिटेगा? जब फिर सम्यक्त्व प्राप्त करेगा तब। वो कब किया? आयु के अंत में, अंतर मूर्त बाकी है तब उसने प्रथम उपशम प्राप्त किया। प्राप्त करते ही चौथे का अंतर समाप्त हुआ। आप कहेंगे तो फिर पूरा समय साधन में क्यों लगे? अगर औक्षमिक में ही रहते तो औक्षमिक में मरण नहीं होता, और औक्षमिक के बाद वेदक होता तो भी अंतर्मूर्त के बाद मरता, औक्षमिक के बाद मिथ्यात्व में आता तो भी अंतर्मूर्त रहकर मरता। इसलिए औक्षमिक में से सासाधन में ले आए और सासाधन में मरण हो सकता है। मैंने मान लेते छह अवली पहले सासाधन में आया और एक समय में वहां सासाधन में रहकर वो मरकर वहां से निकलकर मनुष्य तिरेंच हो सकता है ना बात। अब 29 पृष्ठ पर आते हैं, 29। ये तो हमने पहले दूसरे गुणस्थानों की क्या सात्विक की जो विशेषता है वो तो बाद में बता दी। अब यहाँ कहते हैं शासन सम्मा दिट्ठि सम्मा मिच्छा दिट्ठिनम अंतरम केवचिरम कालादो होती नाना जीवम पड़ुच्च जहन्ने न एक समय। सातों पृथ्वियों के लिए वही बात है जो हमने पहले भी देखी थी। उक्त सातों ही पृथ्वियों के सासाधन समय दृष्टि और समय मिथ्या दृष्टि नारकियों का अंतर कितने काल होता है? नाना जीवन की अपेक्षा जगन्य से एक समय। यानी कोई भी जीव सासाधन में न हो, नाना जीव एक समय और अधिक से अधिक पल्लेकार समय। इस सूत्र का अर्थ सुगम है। उक्त से न पलिदो मस असंख्य यदि भागो, उक्त पृथ्वियों में ही उक्त गुणस्थानों का उत्कृष्ट अंतर पल्लवों के असंख्यात वे भाग है। जिस प्रकार नारकियों के ओघ अंतर वर्णन में, नारकियों का ओघ है सातों के जनरली सामान्य से नारकियों की बात बताई थी, पल्लवों के असंख्यात वे भाग की प्ररूपना की है, उसी प्रकार यहाँ पर भी करना चाहिए। ये हो गया ना, नाना जीवन की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर हो गया। अब एक जीवम पड़ुच्च 33 नंबर जहन्ने न पलिदोमस असंख्य चति भागो अंतमुहूर्तम। सासाधन के लिए और तीसरे के लिए अलग अलग कथन है जो अभी हमने बात देखी थी। अर्लीस्ट उसको प्रथम उपशम करना है तो पल्ले का असंख्यात भाग प्रमाण काल बीत जाएगा, तभी जाके फिर दोबारा सासाधन में आ सकता है। उक्त गुणस्थानों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्लवम का असंख्यात भाग ये सासाधन के लिए और अंतर्मूर्त तीसरे गुणस्थान के लिए। यह सूत्र भी सरल ही है क्योंकि नारकियों के ओघ अंतर वर्णन में प्ररूपित किया जा चुका है। अभी हमने इस पर ही चर्चा की थी। उक्त सेना सागरोवम तिन्नी सत्त दस सत्तारस बाईस तैतीसम सागरोवमानी देशुनानी। तो इसमें ऐसे दो दो बार क्यों लिखा? सागरोवम अलग लिखा और बाद में इतने तीन सात एक साथ सबको सागरोपम लिखते ना। नहीं नहीं देखो हिंदी में कैसा लिखा था, सातों ही पृथ्वियों में उक्त दोनों गुणस्थानों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट वक्रु करना अंतर क्रमशः देशों न एक तीन सात दस सत्रह बाईस और तैतीस सागरोपम है। यहाँ तो सबके मिलकर एक सागरोपम शब्द बताया, प्राकृत में क्यों नहीं कहा? प्रतिवाद ही विचार करो। देखो देखो मैं बताती हूँ। एक अब हिंदी में तो एक सागर और अनेक भी सागर होते हैं, यहाँ सागरोवमम एक एक वचन और सागरोवमानी अनेक वचन। एक के लिए वो एक वचन है ना, और ये अनेक वचन है, अनेक सागर है, तो प्राकृत में वो उसका अलग पड़ता है। एक के लिए सागरोमान्य नहीं लिख सकते थे, इसलिए उसको अलग से लिखा। हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक सागर अनेक सागर ऐसा कहते हैं। ये हमने हिंदी भी पढ़ लिया। इस सूत्र का अर्थ कहने पर सातवीं पृथ्वी के शासादन सम्य दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि नारकियों का उत्कृष्ट अंतर नारक सामान्य के उत्कृष्ट अंतर के समान है, क्योंकि उसमें नारक सात्विक की अपेक्षा हमने उत्कृष्ट अंतर देखा था। इन जनरल जब नारकियों में अंतर देख रहे थे, क्योंकि ओघ वर्णन में ध ने घ ओघ वर्णन में सातवी पृथ्वी का आश्रय लेकर ही इन दोनों गुणस्थानों की उत्कृष्ट अंतर की प्ररूपना की गई है। प्रथमादि छह पृथ्वियों के, देखो सातवीं पृथ्वी में क्या बात थी कि शासादन में मरण नहीं सकता, इसलिए शासादन का अंतर, शासादन प्राप्त किया फिर जाके फिर बाद में वो तो मर गया, ऐसा था। पहले मिथ्यात्व में आयु बंद किया, फिर ऑप्शन में करके वो शासादन में आया, और फिर शासादन से मिथ्यात्व में जाकर फिर मरा था। अन्य छह पृथ्वियों में वो शासादन को प्राप्त कराकर मरण करा सकते, इतना डिफरेंस पड़ेगा उसमें। देखो प्रथमादि छह पृथ्वियों के शासादन समय दृष्टि जीवों का उत्कृष्ट अंतर कहने पर एक तिर्यंश अथवा मनुष्य प्रथमादि छह पृथ्वियों में उत्पन्न हुआ, छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो शब्द डालो, एक अंतर्मुख किया, विश्राम ले, फिर विशुद्ध हो, उपशम सम्यक्त को प्राप्त होकर शासादन गुणस्थान को प्राप्त हुआ, यानी उपशम के काल में ही शासादन में गया है, वो चौथा अंतर्मुक्त हुआ। फिर मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हुआ, वो शासादन में एक समय हो या छह अवधि हो, मिथ्यात्व में जाने का समय तो फिक्स है उसका, उपशम सम्यक्त का जो औपशमिक का उपशम का काल था उसका होने पर शासादन में गया, यानी उसका अंतर चालू हो गया। पुनः अपनी अपनी पृथ्वियों की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण रहकर आयु के अंत में उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। समझ में आती है बात, एक अंतर जितना उपशम सम्यक्त का काल है उतने पहले उसने उपशम सम्यक्त प्राप्त किया। उपशम सम्यक्त के काल में एक समय अवशेष रह जाने पर शासादन गुणस्थान को प्राप्त होकर निकला, उत्कृष्ट अंतर करना है, शावली पहले नहीं एक समय पहले, इस प्रकार एक समय से अधिक चार अंतर्मूर्तों से कम अपनी अपनी पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति उस पृथ्वी के शासादन समय दृष्टियों का उत्कृष्ट अंतर होता है। वहां हमने छह अंतर्मूर्त किए थे साथ ही, यहाँ तो चार अंतर। अब इन्हीं पृथ्वियों के सम्यक मिथ्या दृष्टि नारकियों का उत्कृष्ट अंतर कहते अंतर बराबर करना। अब देखो मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता रखने वाला कोई एक तिर्यंश अथवा मनुष्य विवक्षित पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न हुआ, ये सादी मिथ्या दृष्टि लाएगा। छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, यानी सम्यक मिथ्यात्व का प्राप्त काल पूरा होने पर वो अंतर चालू हो गया, इसलिए उसका काल भी चौथे अंतर्मुख में ले लिया। पुनः मिथ्यात्व को अथवा सम्यक्त को जाकर अंतर को प्राप्त हुआ, और जिस गुणस्थान को गया उसमें अपनी आयु स्थिति प्रमाण रहकर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, इस प्रकार अंतरकाल प्राप्त हो गया। लास्ट में पर उसमें मरण नहीं होता है, वहां से फिर चौथे में या पहले में लाना है ना उसको। पुनः मिथ्यात्व को अथवा सम्यक्त्व को प्राप्त होकर निकला, इन छह अंतर्मूल से कम अपनी अपनी पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण नारकी समय मिथ्या दृष्टियों का उत्कृष्ट अंतर होता है। एक दो चार लाइन पढ़ लेते हैं। अब सर्वगतियों में सम्यक मिथ्या दृष्टियों के निकलने का क्रम कहते हैं, वो इस प्रकार है। जो जीव सम्यक दृष्टि होकर और आयु को बांध कर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, वह सम्यक के साथ ही उस गति से निकलता है। सम्यक तो बराबर करना, देखो अभी वो चौथे में सम्यक दृष्टि होकर आयु को बांधकर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होते हैं। इन्हें पहली बार उसने सम्यक मिथ्यात्व प्राप्त किया था, फिर बीच में वो मिथ्यात्व हुआ, सम्यक हुआ, जो कुछ हुआ, तो कहते वो सम्यक दृष्टि हुआ और सम्यक में उसने आयु बांधी, मनुष्य बांधी, और बाद में तीसरे में आया। तो तीसरे में तो मरण नहीं हो सकता, तो तीसरे के बाद तो उसको मरना है, तो सम्यक में जाके मरेगा। और इसने मिथ्यात्व सहित आयु बांधी है, मिथ्यात्व में मनुष्य आयु भी बांध सकता है, तिरियंत आयु भी बांध सकता है, तो वो तो वहां से तीसरे में से फिर पहले में आएगा। जिस गुण स्थान में आयु बांधी है वहां जाके मरेगा। अथवा जो मिथ्या दृष्टि होकर और आयु का बांधकर समय मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, वह मिथ्यात्व के साथ ही निकलता है। यह कैसे जाना जाता है? आचार्य परंपरागत उपदेश से जाना जाता है। यहाँ अपने नारकियों की अभी मार्गणा समाप्त हो गई, यही रुकेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे